नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्की ने श्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रीमती कार्की ने भारत नेपाल के सदियों पुराने मित्रतापूर्ण संबंधों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के ताजा राजनैतिक घटनाक्रम से अवगत भी कराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल को भारत का निरंतर सहयोग देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती कार्की और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार विकसित बिहार बनाने की दिशा में काम कर रही है और उसे केंद्र सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। बिहार के रोहतास जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो नीतीश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, ममता दीदियों, जीविका दीदियों, युवाओं तथा महिलाओं के लिए किए गए उपायों के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी प्रदान करें। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं।
धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयकर अधिनियम तथा वस्तु और सेवा कर में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर में इस तरह से बदलाव किए गए हैं कि इससे घरेलू जरूरत के सामान और कृषि उत्पाद पहले से अधिक सस्ते हो जाएंगे। रेल यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेल सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है।
यदि आप 11 वर्ष पीछे जाएं, तो दुर्घटनाओं की संख्या 170 होती थी। सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश के कारण दुर्घटनाओं की संख्या 31 रह गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है।
विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार लोगों को अवैध और नकली व्यापार से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से लोगों को काफी राहत मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य अब मेंबर पोर्टल पर एक ही लॉगिन के जरिए अपनी सभी प्रमुख सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल से शिकायतों में कमी, पारदर्शिता में सुधार और सदस्यों की संतुष्टि में वृद्धि होने की उम्मीद है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 320 अंक बढ़कर 83,014 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 93 अंकों की बढ़त के साथ 25,424 पर जा पहुंचा। सरकार ने बीएसएनएल के नाम से जारी कथित नोटिस का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों के सिम केवाईसी को निलंबित कर दिया है और उनके सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस अधिसूचना को फर्जी बताया है और लोगों को आगाह किया है कि वो ऐसे नोटिसों से सावधान रहें। और अब खबरें खेल की दुनिया से। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक में सचिन यादव चौथे और नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे। उधर पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिलाओं की सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की पोर्णपावी चोचुवोंग को आसानी से हरा दिया। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।